नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम।
मंत्रिमंडल ने ओडिशा में राजधानी क्षेत्र नियंत्रित रिंग रोड के निर्माण की भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है।
6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए, कोलकाता से चेन्नई का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH-16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है, ऑब्वियसली वहाँ पे काफी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में रामेश्वर पे आके ये जुड़ेगा।
संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करेगा। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये संशोधन भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार ने खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसका लक्ष्य भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन लाना है। विधेयक में असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान है जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि IIM गुवाहाटी के लिए 550 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लोगों को 5 लाख से ज्यादा मकान आवंटित नहीं किए हैं। श्री चौहान ने लोकसभा में कहा कि राज्य सरकार ने लोगों के लिए 2,15,000 मकानों को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन के बावजूद योजना के अंतर्गत 3,10,000 घरों का निर्माण अभी नहीं हुआ है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर आज भी बाधित रही। कई स्थगनों के बाद लोकसभा और राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इंडिया गठबंधन ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। श्री रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक के दौरान एनडीए सांसदों से श्री राधाकृष्णन का परिचय करवाया। भाजपा ने कहा है कि भारत दुनिया की जटिल शुक्ल परिदृश्य से कम प्रभावित होगा। पार्टी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात पर अत्यधिक निर्भर अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत स्थिर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत में वस्तुओं की घरेलू खपत 50% से अधिक है जो देश के विकास को गति प्रदान करती है। वर्तमान में भारत की विकास दर बढ़ रही है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 370 अंक बढ़कर 81,644 पर बंद हुआ। निफ्टी 103 अंक की बढ़त के साथ 24,980 पर पहुंच गया। महिला क्रिकेट विश्वकप 2025 और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतीका रावल, हरलीन देवल, दीप्ति शर्मा, जमीमा रोड्रिक्स, रेणुका ठाकुर, ऋचा घोष, राधा यादव और श्री चरणी भी टीम में शामिल हैं। महिला विश्वकप की शुरुआत 30 सितंबर से होगी। वहीं एशिया कप 2025 के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।